जय अनिला प्रेमा धना करुणा प्राचो
Krishna Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जय विष्णुपाद परम हंस प्रवचि का चार्य अष्टोत्र अष्टर्षि श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु सिवर द होल वर्ल्ड एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परम हंस प्रवचि का चार्य अष्टोत्र अष्टर्षि श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत ससिद्ध गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा राधिका रमन जी की श्री श्री कृष्ण बलराम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री गौर निताय की सर शालिग्राम शिला जी की गिरिराज गोवर्धन की वृंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथ राशि भागवतम की श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल भगवद्गीता मैराथन की श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव के निदाई गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड गौरांगा ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की ओम अज्ञानास्ति विरंधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीना बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरूप्यश्च कृपा सिंधुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे हरे कृष्णा। आप सबका आज के इस विशेष उत्सव पे हार्दिक स्वागत है। आज श्री भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर महाराज जी का तिरोभाव दिवस है। तो वैष्णव समाज में अविर्भाव और तिरोभाव दोनों ही दिव्य हैं। कल श्री प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में बता रहे थे अविर्भाव और तिरोभाव दोनों ही आध्यात्मिक हैं। एक भौतिकता में लिप्त व्यक्ति के लिए जब उसके कोई सगे संबंधी जाते हैं तो वो शोक का विषय होता है, लेकिन भक्तों के लिए ये उत्सव है क्योंकि आज के दिन 1936 में 31 दिसंबर को श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज अपने नित्य लीला में प्रवेश हुए। भक्तों लोग उनके संग से दूर हो जाते हैं इसका उन्हें शोक होता है, किंतु वो भगवान के नित्य लीला में प्रवेश किए हैं तो ये उत्सव की बात है। तो आज हम श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी के चरित्र से कुछ गुणगान करेंगे और जैसे कि भगवान का भगवान के असीमित गुण हैं, भगवान के नित्य पार्षदों के भी गुण असीमित हैं, और किसी भी बच्ची के लिए उनको बखान करना लगभग असंभव है। लेकिन फिर भी भगवान के भक्तों का गुणगान भगवान को ही अति प्रिय है, और भगवान के भक्तों का गुणगान करके हम शुद्ध होते हैं। मैं सभी भक्तों से कृपा की याचना करता हूँ कि मैं भक्ति सिद्धांत सेठा कुमार जी के महिमा का कुछ गुणगान कर सकूं अपने शुद्धिकरण के लिए और आप सबके दिव्य आनंद के लिए। देखिए, जैसे किसी परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो परिवार के सभी सदस्यों से उसका एक स्वाभाविक प्रेम का संबंध स्थापित हो जाता है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में जब कोई प्रमाणिक गुरु की शरण में आता है, दीक्षा लेता है, तो उसका भी इस आध्यात्मिक परिवार से, गुरु परंपरा से एक स्वाभाविक संबंध स्थापित हो जाता है। और विशेषकर आध्यात्मिक जीवन में तो समय और स्थान की कोई सीमा नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं वो हमारे पास आज बपू रूप में नहीं है, लेकिन वाणी रूप में अभी भी विद्यमान है, और अभी भी हम उनका संग कर सकते हैं और उनसे संबंध, प्रेम संबंध रख सकते हैं। जब हम अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की महिमा पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें दिव्य गर्व होता है कि क्या हमारी परंपरा है, कैसा हमारा परिवार है, हम किस गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा समर्पित, सबसे ज़्यादा विनम्र, सब गुणों से संपन्न ऐसे परिवार से हैं। जैसे कि एक बार हिज होलीनेस भक्ति भागवत स्वामी महाराज बता रहे थे, आध्यात्मिक जीवन में ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या जानते हैं, लेकिन उससे भी यार महत्वपूर्ण ये है कि हम किसको जानते हैं। तो आज हमें गर्व होगा कि हम किसको जानते हैं। हम जानते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर महाराज जी को। इनका चरित्र इतना महान है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की विषय है, गर्व का विषय है, और हमें बहुत प्रेरणा मिलेगी इनके जीवन में। जिस ढंग से इन्होंने अपने जीवन को जिया, जिन सिद्धांतों के आधार पर इन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, जिस ढंग से इन्होंने सबको प्रेरणा दी, ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है, और हमें बहुत शिक्षा प्रदान करेगा और बहुत प्रेरणा प्रदान करता है। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर महाराज भगवान के नित्य पार्षद है। राधा कृष्ण की लीला में इनका जो सिद्ध स्वरूप है वो नयन मंजरी का है। तो नयन मणि मंजरी, नयन मणि मंजरी का अर्थ क्या है? मणि का अर्थ होता है द ज्वेल, और मणि का दूसरा अर्थ होता है, जैसे नयन तो हो गए आंख नेत्र, और मणि का अर्थ हुआ है कि आंखों का जो ज्वेल क्या है, पुतली, पीपल बोलते हैं, पुतली बोले। तो ये नयन मणि मंजरी, तो भगवान श्री कृष्ण के तरफ से देखा जाए तो श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को बहुत आकर्षित करती हैं, मदन मोहन मोहिनी, और पूरी राधा रानी के चरित्र में, उनके व्यक्तित्व में सबसे जो आकर्षित करता है कृष्ण को क्या, उनका चेहरा, सुंदर चेहरा, और उनके सुंदर चेहरे में सबसे ज्यादा आकर्षित क्या करते हैं, उनकी आंखें, और उनकी आंखों में सबसे ज्यादा आकर्षित क्या करते हैं, उनकी पुतलियां, इसलिए नाम है नयन मणि। और श्रीमती राधा रानी की तरफ से देखें तो ये जो नयन मणि, जो आंखों की उतनी पुतलियां हैं, ये उनके सबसे बड़े एसेट्स हैं, सबसे बड़े धन हैं, क्योंकि इन्हीं पुतलियों के माध्यम से वो किसका दर्शन करती हैं, श्री कृष्ण का, इसलिए नयन मणि। तो नयनमन मंजरी की सेवा क्या है कि राधा और कृष्ण की हमेशा उनको मिलाने की उत्सुकता रहती है कि कब ये मिलें और अपने विरह को समाप्त करके मिलें आपस में और उसका आनंद उठाएं। तो जिस प्रकार से भगवान का प्राकट्य और भगवान के कर्म दिव्य हैं, उसी प्रकार से भगवान के नित्य पार्षदों का प्राकट्य भी दिव्य है। तो 1874 6 फरवरी शिला भक्ति सिंह सेठ ठाकुर महाराज का प्राकट्य हुआ। इनके प्राकट्य के पीछे बहुत एक विशेषता, क्योंकि इनके प्राकट्य के लिए प्रार्थना करनी पड़े इनके पिता शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी को, क्योंकि उस समय समाज की स्थिति ऐसी थी कि गौड़िया वैष्णव सिद्धांत का पालन करना अत्यंत कठिन था। आज जिस फॉर्म में, जिस रूप में हमें इस्कॉन संस्था में ये गोड़िया वैष्णव सिद्धांत पैकेट होकर मिल रहा है, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है। और इस स्थिति तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्ववर्ती आचार्य विशेषकर श्री भक्ति विनोद ठाकुर और श्री भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर महाराज को बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा। श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपने को बिल्कुल अकेला पा रहे थे उस समय। गौड़िया वैष्णव का सिद्धांत बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया था, 13 प्रकार की अप संप्रदाय थी और गौड़िया वैष्णव के नाम पर अजूल फजूल की बातें हो रही थी और जात गोसाई थे, मायावाद फैल रहा था, ऊपर से ब्रिटिश राज्य था और राष्ट्रवाद ये थे और प्राकृत सहिज्या से अप संप्रदाय। तो ऐसे के बीच में क्या गौड़िया वैष्णव असली सिद्धांत है किसे कुछ पता नहीं था और अकेले श्री भक्तिविनोद ठाकुर संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि अपनी एक किरण को भेजे जो कि मेरे मिशन में सहायता करे। श्री प्रभुपाद भागवतम के तीसरे स्कंध में लिखते हैं, अगर किसी व्यक्ति को संतान उत्पन्न करनी है तो दो कंडीशंस होनी चाहिए, या तो संतान स्वयं भगवान का अवतार हो या फिर वो रे ऑफ विष्णु हो जो कि भगवान के मिशन में मदद करे। ऐसी तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने ये प्रार्थना की कि आप उस किरण को भेजे जो कि मेरे को इस मिशन में सहायता करे आपके सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए। तो फिर प्रकट हुए बिमला प्रसाद जी जो उनका नाम था और ये भक्ति विनोद ठाकुर के चौथी संतान है। और जैसे इनका जन्म दिव्य, बचपन से ही बहुत फेमस घटना है कि जब इनके अम्बिलिकल कॉर्ड जो नाभि से नाल निकलती है वो एक जनेऊ के रूप में गर्दन में लपेटी हुई थी और जो ज्योतिष ने इनका बर्थ चार्ट चेक किया तो बोले इनमें सारे महान व्यक्ति के 32 गुण उपस्थित हैं और ऐसा जो जन्म कुंडली तो देखी नहीं और ये जो व्यक्ति है निश्चित रूप से परम सत्य का बहुत बड़ा प्रचारक बनेगा। और भक्ति विमला प्रसाद जी एक लिविंग जैसे कहते हैं वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया थे और 3 साल की उन्हें पूरी भगवद्गीता याद हो गई थी और भक्तिविनोद ठाकुर जी ने उनको अपने कुर्म विग्रह दे दिए थे, नरसिंह मंत्र दे दिए थे, अपनी जपमाला दे दी थी। तो बहुत शुरू से ही बहुत बड़े इनका रुचि थी शास्त्रों के अध्ययन में, सुनने में, पढ़ने में। तो आज इनके जीवनी तो बहुत विस्तार में है और हम कृतज्ञ हैं परम पूजनीय भक्ति विकास स्वामी महाराज जी के, जिन्होंने बहुत सुंदर 3 वॉल्यूम्स लिखे हैं भक्ति सिद्धांत वैभव। उसके इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि भक्ति सिद्धांत वैभव के 2 भाग है, भक्ति सिद्धांत विलास और भक्ति सिद्धांत वाणी। भक्ति सिद्धांत विलास का अर्थ है कि उनके पास्ट टेंस, उनकी लीला और उनकी वाणी यानी कि उनकी इंस्ट्रक्शंस। तो आज के दिन कुछ उनके लीलाएं और कुछ उनकी वाणी, कुछ उनकी इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान देंगे। हिज होलीनेस जयप्रदा गोस्वामी महाराज एक बार अपने प्रवचन में बता रहे थे जब वैष्णवों का 13वां भाव दिवस हो तो उनकी शिक्षाओं पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि उनकी शिक्षाओं से हम उनका वाणी संग प्राप्त करते हैं। तो कुछ शिक्षाएं और कुछ पास्ट टाइम्स, कुछ कंट्रीब्यूशन से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही विस्तार में है, देखने कितना हम कर पाते हैं। तो सबसे पहले जो श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज एक बहुत ही क्रांतिकारक प्रचारक थे, बहुत क्रांतिकारक प्रचारक। कहते हैं ना कोई गौड़िया वैष्णव, कोई भी अध्यात्मवादी स्पिरिचुअलिस्ट अगर देखेगा कि इतिहास में कितनी बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं तो सभी क्रांतियां जो इस संसार में अभी तक हुई हैं उस गौड़िया मठ ने जो क्रांति की थी उस समय के समाज में जो उल्टी सीधी धारणाओं के प्रति, उससे महान क्रांति कोई नहीं हो सकती। बहुत ऐसे क्रांतिकारी प्रचारक थे शिला भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर। वो चाहते थे कि इस पूरी की पूरी माया की टेरिटरी को मैं कैप्चर कर लूं और इस संसार में एक जीव भी ऐसा ना हो जिसके पास शुद्ध भक्ति का संदेश ना पहुंचे और इस शुद्ध भक्ति के संदेश को देने में थोड़ा सा भी डेविएशन वो टॉलरेट नहीं कर सकते थे। शुद्ध संदेश जाना चाहिए और वो अपने शिष्यों को इस जंग से ट्रेन करते थे और जहां थोड़ी सी डेविएशन देखते थे 0% टॉलरेंस, को तुरंत एज इट इज मैसेज जाना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने बहुत सी कठिनाइयों को सहा, पूरे इस गौड़िया वैष्णव सिद्धांत को स्थापित करने के लिए जो उन्होंने पूरा ग्राउंड सेट करना था उस समय उस ग्राउंड में उस क्षेत्र में बड़े खरपतवार थे और वो खरपतवार क्या थे, जात गोसाई, कि जन्म से ही जो ब्राह्मण होगा वही ब्राह्मण है, या फिर मायावाद, या फिर राष्ट्रवाद। उस समय तो क्रांति थी महात्मा गांधी की और सुभाष चंद्र बोस जी के, या फिर मुसलमानों का राज, उनका प्रभाव, ब्रिटिशर्स का राज। तो ये तरह तरह के प्रभाव थे, इन सब के बीच में से गौड़िया वैष्णव सिद्धांत को स्थापित करना था, तो उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो बिल्कुल जैसे कि हनुमान जी की तरह वो चैतन्य महाप्रभु के संदेश को लेकर आए थे, और जिस ढंग से हनुमान जी ने संघर्ष किया, उनका पूरा जीवन संघर्ष का था। श्रीला भक्ति सिंह सर ठाकुर महाराज कहते थे कि ये जितने भी तथाकथित धर्म हैं, ये तो जहर के मर्दबान हैं, और इनके ऊपर क्या है, धर्म दिखने के लिए थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा दूध रखा हुआ है, लेकिन अंदर जहर है। और इसलिए धर्म पूजितो कैटव परम निर्मत सराणम सताम वैद्यम वस्त्रम अत्र वस्तु शिवदम तापत्र अनुमोलनम, जो भागवतम का दूसरा श्लोक है। इसके मत का पूरा मूर्तिमान रूप थे, वो कोई भी ऐसा चीटिंग रिलीजन रहने नहीं देना चाहते थे। वो बोले थे संसार में प्रचारक नहीं है, सब प्रतारक हैं। प्रतारक मतलब चीटर्स। बोले पृथ्वी दे यत कथा धर्म नाम चले, भागवत कहे ताहा परिपूर्ण चले। पृथ्वी में जो धर्म के नाम पे जो कथा चल रही है, ये सारे के सारे चीटर्स हैं। तो इसका सबका खंडन करना, सबको निकालकर फेंकना है। बंगाली जो लोग थे उस समय बंगाल में, बहुत उनको गर्व था कि हमारे यहाँ बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हुए हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। लेकिन भक्ति सिंह सर ठाकुर महाराज ने क्या कहा, सबके सब अव्वल दर्जे के मूर्ख। क्या खंडन, बोले सबके सब मूर्ख हैं। और कहते थे कोई मेरा साथ दे या ना दे, सब लोग मुझे अकेले छोड़कर चले जाएं, मैं अकेला ही क्यों ना रह जाऊं। मेरे तथाकथित शिष्य जो मुझे दिखाते हैं कि मैं समर्पित हूं, वो भी छोड़कर चले जाएं, तब भी मरते दम तक मैं ये संघर्ष करता रहूंगा। और गलती से किसी एक जीवात्मा के कान में भी यह शुद्ध संदेश पहुंच गया, वही पर्याप्त है पूरे संसार में मंगल लाने के लिए। ये उनके स्पिरिट थे। वो ऐसे प्रचारक थे, श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम की जय। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि कितने वैष्णव हैं, क्यों इतना प्रचार करो, कितने वैष्णव हैं? तो उन्होंने बोला, अरे संसार में कितने न्यूटन हैं, कितने लोग पीएचडी होते हैं, पूरे बंगाल से एक जेसी बोस निकला, जगदीश चंद्र बोस, तो क्या बाकी लोग विज्ञान के क्षेत्र में नहीं जाते? तो बोले वो, उनको ये शौक नहीं था कि मैं ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर इकट्ठे करूं। वो चाहते पूछ भाई, चाहे जितने भी मेरे मठ हैं, जितने भी उसमें फैसिलिटीज हैं, जितने भी मंदिर हैं, अगर सब भी मैं बेच दूं, किसी एक व्यक्ति को मैं शुद्ध भक्त बना दूं, तो मेरा मिशन पूर्ण है। तो ये उनका स्पिरिट था, और इसके लिए वो पूरा संघर्ष करने को तैयार थे। वो ये नहीं चाहते थे कि मैं एक जगह चुपचाप बैठे रहूं, और यही स्पिरिट वो अपने शिष्यों में चाहते थे। वो उन शिष्यों की बहुत प्रशंसा करते थे जो मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तकलीफ सहने को तैयार है। उनका एक स्टेटमेंट था, अनलेस वन इज रफ्ड अप बाय द वर्ल्ड ही कैन नॉट वर्शिप द लॉर्ड। अगर इस संसार से बुरी तरह किसी को क्या किया जाए, रफ रोंदा ना जाए, संसार की तरह कोई व्यक्ति पूरी तरह से रोंदा ना जाए, प्रताड़ित ना किया जाए, वो भगवान की पूजा नहीं कर सकता। इसलिए हम इस कृष्णा भारत आंदोलन में अगर शांति की खोज में आए हैं, तो हमें अशांति ही मिलेगी, निराशा ही मिलेगी। ये जो आंदोलन है, ये क्रांतिकारी आंदोलन है। क्रांति में हलचल होती है, क्रांति में आराम से बैठ के ओम शांति शांति नहीं है ना। इसलिए कई लोग आते हैं तो बड़े वो हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, यहाँ आकर भी इतनी टेंशन, यहाँ भी इतनी भाग दौड़। यस, ये संघर्षमय आंदोलन है। ये प्रीचिंग मीन्स फाइटिंग, भक्ति सिद्धांत से फाइट करना है हमें, माया के प्रति ये युद्ध है। युद्ध में शांति की अपेक्षा करना मूर्खता है। तो इसलिए उनके जो बाकी पूरा समाज उनको क्रिटिसाइज करता था, तो अपने शिष्यों को कहते थे कि सहन करना सीखो, जब तक हम सहन करना नहीं सीखेंगे, हम हरि नाम का जप नहीं कर सकते। ये लोग क्रिटिसाइज करेंगे, इनको करने दो, लेकिन हमें अपने प्रचार को आगे बढ़ाना है। तो किस ढंग से वो जात ब्राह्मणों, जात गोस्वामी, मायावाद का कैसे खंडन किया। एक बारी 1911 में मिदनापुर में एक सभा हो रही थी ब्राह्मणों के ऊपर, ब्राह्मणों की क्या स्थिति है। तो इस सभा में भक्तिनाथ ठाकुर जी को जाना था, लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर बीमार पड़ गए। जब वो बीमार पड़ गए तो बहुत क्रंदन करने लगे, वो जरूर जाना चाहते थे। तो वो कह रहे थे कि कोई भी इस संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस सभा में जा सके। तभी उनके पुत्र उनके पास आए, उन्होंने बोला कि मैंने उन्हें एक नया नया पेपर लिखा था, उनको दिखाया। जब उस पेपर को उन्होंने पढ़ा, वो भी ब्राह्मणों की स्थिति के ऊपर ही था, तो भक्तिनाथ ठाकुर बहुत प्रसन्न हुए और जोर जोर से बोलने लगे, सरस्वती सरस्वती, यानी कि स्वयं जो सरस्वती देवी है मेरे पुत्र की जीवा पर आ गई है और ये सत्य बोल रही है। तो बोले ठीक है तुम जाओ। तो जब पहले दिन भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज गए, तो उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन के तीन भाग रखे। पहला भाग था प्राकृत खंड, दूसरा था हरिजन खंड और तीसरा था व्यवहार खंड। प्राकृत खंड में उन्होंने खूब ब्राह्मणों का गुणगान किया और बोला ये ब्राह्मण ही है जिनकी शक्ति से पृथ्वी के सारे तत्व अभी तक स्थित हैं। ये ब्राह्मणों की शक्ति से ही इंद्र अपनी स्थिति पर स्थित है। ये ब्राह्मणों की ही शक्ति है कि उनके शाप से ये समुद्र का जल खाड़ा हो गया। अरे किसी अस्त्र से तो किसी एक व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं, ब्राह्मण के शाप से तो पूरे कुल का नाश हो जाता है। ऐसा जबरदस्त गुणगान किया जो स्वयं ब्राह्मणों को भी नहीं मालूम था, क्योंकि सारे ब्राह्मण वाह हो गए। लेकिन यह सारा जो गुणगान था ये सारा धर्म शास्त्रों पर आधारित था। तो पहले दिन तो एक गुणगान चलता रहा तो सब बोले वाह क्या व्यक्ति है। दूसरे दिन में फिर उनकी बारी आई, बोले अब मैं बताऊंगा लेकिन ये ब्राह्मण है कौन। अभी हमने कल गुणगान किया ये धर्म शास्त्रों पर आधारित था। हमारे वेदों की तुलना की गई है एक वृक्ष से और इस वृक्ष की दो शाखाएं हैं, एक ज्ञान और एक कर्म। लेकिन हमने बोला ना हम कर्म पर आश्रित हैं ना हम ज्ञान पर आश्रित हैं, हमें तो फल से मतलब है और फल क्या है वेदों का, भक्ति। तो उन्होंने पद्यावली से एक श्लोक था जो कि शीला रूप गोस्वामी जी द्वारा लिखा होगा, उन्होंने बोला कर्म अवलंबन कर केचित केचित ज्ञान अवलंबन वयम तो हरिदासानाम पाद त्राणालम अवलंब, कि कुछ तो कर्म का आश्रय लेते हैं कुछ ज्ञान का आश्रय लेते हैं, हम तो भगवान के भक्तों के चरणों के रज का आश्रय लेते हैं और यही पूरे वैदिक शास्त्रों का फल है। तो उन्होंने बताया कि ब्राह्मण कौन है, तो छांदोग्य उपनिषद से उन्होंने प्रश्न पूछने शुरू किए वहां की सभा में, ब्राह्मण क्यों है, क्या आत्मा ब्राह्मण है। मतलब आत्मा तो ब्राह्मण हो नहीं सकती, आत्मा का तो कोई डेजिग्नेशन होता नहीं। तो क्या शरीर ब्राह्मण है, मतलब अगर शरीर ब्राह्मण होता तो एक ब्राह्मण के पिता के पुत्र मृत देह को अगर पुत्र जला रहा है तो ये बहुत बड़ा अपराध है क्योंकि शरीर ही ब्राह्मण है। तो बोले क्या जात ब्राह्मण है, बोले जात भी ब्राह्मण नहीं हो सकती क्योंकि जो स्वयं व्यास देव जी ब्राह्मण थे वो किस जात से थे, मछुआरा जात से थे। जो वाल्मीकि जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, एंट हिल से हुई। तो बोले ये तो जात भी ब्राह्मण नहीं हो सकती। तो क्या कर्म ब्राह्मण है, बोले नहीं कर्म फल तो सबके लिए एक समान है कोई ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो। तो फिर क्या ज्ञान ब्राह्मण है, बोले नहीं ऐसे बहुत से क्षत्रिय हैं जिन्होंने परम सत्य का ज्ञान प्राप्त किया है। तो फिर ब्राह्मण कौन है, ना शरीर ब्राह्मण है ना आत्मा ब्राह्मण है ना ज्ञान ब्राह्मण है ना कर्म ब्राह्मण है ना जात ब्राह्मण है, तो फिर ब्राह्मण कौन है। फिर उन्होंने बताया ब्राह्मण का अर्थ है जिसके पास उसके कार्य कैसे हैं उसके आधार पर, उसका व्यवहार कैसा है और उसकी संस्कृति कैसी है, उसकी एक्टिविटीज कैसे हैं, उसके बिहेवियर कैसा है, उसका कल्चर कैसा है। द एबीसी ऑफ ब्राह्मण, एक्टिविटीज बिहेवियर एंड कल्चर, इसके आधार पर निर्धारित होगा कि ब्राह्मण कौन है। और फिर उन्होंने बोला कि एक वैष्णव ही असली ब्राह्मण। धीरे धीरे उस समय ब्राह्मण थे उनको लगा पता नहीं क्या हो गया है। तो ये तो पलटी मार रहे हैं। तो दूसरा दिन निकल गया, ये था हरिजन खंड। हरिजन खंड में उन्होंने स्थापित किया कि वैष्णव और ब्राह्मणों में अंतर है। उन्होंने बोला कि फिर उन्होंने शास्त्रों से उदाहरण दिए जैसे कि सत्य काम का, बोले सत्य काम की माँ थी एक वैश्या और जब गौतम ऋषि ने उनसे पूछा कि उनके पिता कौन है, उन्होंने सत्य सत्य बोला कि मुझे अपने पिता का मालूम नहीं। वो क्योंकि उनका व्यवहार एक सत्यता का था, गौतम ऋषि ने उनको ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया। और फिर उन्होंने बताया अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है लेकिन उसके कार्य शूद्र वाले हैं, उसका व्यवहार शूद्र वाला है तो वो शूद्र है, लेकिन शूद्र कुल में भी जन्म लेने के बाद जिसके कार्य, जिसका व्यवहार, जिसकी संस्कृति ब्राह्मण जैसे है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। अब तीसरे दिन उनको फिर 3 घंटे मिले, अब उनको पूरा कंक्लूड करना था और इस व्यवहार कांड में उन्होंने बताया कि वैष्णव ही सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। और फिर उन्होंने बताया अजामिल की कथा से कि अजामिल को लाने के लिए विष्णु जन भी आए और यमदूत भी आए, लेकिन विष्णु जन ने संस्थापित कर दिया कि अजामिल परम वैष्णव है। और फिर यमराज जी ने यमदूतों को डांटा, सारे जनता यमदूत से डरते हैं लेकिन यमराज से डांट खाने के बाद अब यमदूत वैष्णवों से डरने लगे। तो उसके बाद ये स्थापित किया कि वैष्णव ही सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। तो जब इतनी बातें हुई तो जितने के जितने सम्राट ब्राह्मण थे वो तो उठकर चले गए और बाकी के लोग इतने प्रसन्न हो गए कि सब के सब दौड़ के आ रहे थे भक्ति सिंह से ठाकुर के चरणों को छूने के लिए। पुलिस ने देखा, ऐसा देखा तो खड़बड़ मच जाएगी, स्टैम्पीड हो जाएगी, कोई लोग मर जाएंगे। तो उन्होंने भक्ति सिंह से ठाकुर महाराज को उठाया और एक बाल्टी में पानी था, उनके पाँव को बाल्टी में डाला और उस बाल्टी को अलग अलग जो पानी के ड्रम्स भरे तो उसमें डाल दिया और फिर एक पाइप लगा के उस पूरे चंद्रामृत को सर लोगों के सर पे बनाया। बोले भाई क्राउड मैनेजमेंट करना ये प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। पूरा का पूरा सबको शिला भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर महाराज जी का चरणामृत मिला। शिला भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर महाराज की। तो इस ढंग से उन्होंने पूरा स्थापित किया कि जो वैष्णव है वो असली ब्राह्मण है। लेकिन वो थोड़ा सा भी जो सम्राट ब्राह्मण थे उनकी इस मेंटेलिटी को बिल्कुल सहन नहीं कर सकते थे। एक बारी एक राजा ने उनको भागवत सप्ताह के लिए बुलाया। कसीम नगर का एक राजा था और जब वहां के सम्राट ब्राह्मणों को मालूम चला, सम्राट ब्राह्मण का अर्थ है नॉट स्मार्ट ब्राह्मण, सम्राट ब्राह्मण का अर्थ है जो कर्मकांडी होते हैं। तो जब उनको मालूम चला कि भक्ति सिंह सेठ ठाकुर महाराज आ रहे हैं तो बड़े घबरा गए, बोलो अगर उन्होंने सत्य बोल दिया तो हमारे तो पेट पे लात पड़ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, 4 दिन तक शिला भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर महाराज को बोलने का ही मौका नहीं दिया, उस यज्ञ स्थली में आने का ही मौका नहीं दिया और राजा को उल्टी सीधी खबर दे दी कि वो बहुत ही अहंकारी व्यक्ति है, वो समझता है कि आप नीच जाति के हो, आपको पता नहीं भागवत समझ आएगी कि नहीं आएगी। तो राजा भी बड़ा परेशान था कि मैंने बुलाया है और आते नहीं है। और जब उनके लिए प्रसाद भेजा जाता था तो श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज केवल ऊपर से तुलसी दे लेते थे, प्रसाद भी नहीं लेते थे। तो फिर ब्राह्मण राजा को बताते थे देखो कितना अहंकारी है, आपका प्रसाद भी स्वीकार नहीं करता। तो राजा को लगा कुछ गड़बड़ है। तो 5वें दिन राजा गया कि आप आइए कुछ तो बोलिए। तो जैसे ही श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज ने बोलना शुरू किया, अभी 5 मिनट ही बोले होंगे, सारे के सारे ब्राह्मणों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और उनको बोलने नहीं दिया। तो भक्ति सिंह सेठ ठाकुर महाराज को बहुत गुस्सा आया और उठकर चले गए। उसी रात 11 बजे वो ट्रेन पकड़ के वापस जा रहे थे तो राजा ने बोला कि आप ये क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हो, ना आपने प्रसाद पाया ना कुछ किया। तो उन्होंने बोला 2 कारण है मैं प्रसाद नहीं पाया, नंबर 1 आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया और नंबर 2 इस तथा कथित प्रसाद को जिसने ऑफर किया वो सम्राट ब्राह्मण है और भगवान ऐसे लोगों की मानसिकता को स्वीकार नहीं करते, इसलिए वो प्रसाद है ही नहीं। तो 4 दिन तक शिला भक्ति सिन्हा सेठ ठाकुर महाराज ने उपवास रखा, कुछ खाया नहीं। और फिर रात को 11 बजे वो ट्रेन पकड़ के गए, अगले दिन सुबह 3 बजे पहुंचे ब्रजपट्टनम, जहाँ पे मायापुर में अभी चैतन्य मठ है वहां पर गए। खुद उन्होंने कुकिंग किया और प्रसाद पाया और अपने व्रत को तोड़ा। जब उनके शिष्य ने उनसे पूछा कि आप इतना कठोर तपस्या क्यों करते हैं तो शिला भक्ति सिन्हा सेठ ठाकुर महाराज ने कहा कि मैं आचार्य हूँ, मुझे अनुशासित रहना ही पड़ेगा तभी मैं उदाहरण स्थापित कर सकता हूँ। ये उनका कितने कठोर थे अपने लिए वो, जैसे बचपन में भी जब वो 2 या 3 साल के थे उनके पिता अपने घर में आम लेके आए तो छोटे बच्चे हैं 2 या 3 साल के, उन्होंने एक आम उठा लिया और खा लिया तो भक्ति ठाकुर जी ने बोला रे आपने क्या किया, जो नया फल आता है उसको पहले गिरधारी को अर्पण करना पड़ता है उसके बाद आप ले सकते हैं, ये तो बहुत बड़ा पाप है। इतना सुनने मात्र से ही उस छोटे बालक विमला प्रसाद ने एक संकल्प ले लिया कि पूरा जीवन मैं आम नहीं खाऊंगा, पूरा जीवन वो पश्चाताप करते रहे कि मुझसे अपराध हुआ है। श्रीला प्रभुपाद कहते थे जब हम अपने गुरु महाराज को कहते थे कि आम लीजिए तो कहते थे नो आई एम एन ऑफेंडर, मैं एक बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मैंने एक बारी बिना भोग लगाए फल खा लिया। क्या स्टैंडर्ड्स थे उनके। हम लोग नकल नहीं मार सकते लेकिन अप्रिशिएट कर सकते हैं कितने हाई स्टैंडर्ड्स वो अपने लिए रखते थे। इस ढंग से साथ ही साथ में श्रीला भक्तिसिंह सरदार को महाराज एक बारी जाज नगर में गए। जाज नगर एक स्थान है उड़ीसा में, तो वहां के राजा ने बोला कि आप कुछ कृष्ण कथा कीजिए। तो भक्ति सिंह सरदार कुमार ने बोला नहीं मैं 10 नाम अपराध पे बोलूंगा। उन्होंने बोला नाम अपराध पे बोलने क्या आवश्यकता है, यहाँ तो उपस्थित जो ऑडियंस है सारे ब्राह्मण हैं, बड़े पहुंचे हुए ब्राह्मण हैं, आप कुछ रसीली कथा कीजिए। तो उन्होंने बोला अच्छा आप कहते हैं ब्राह्मण है, आज मालूम चल जाएगा ब्राह्मण कितने ब्राह्मण है। बोले क्या करना पड़ेगा। बोले ठीक है 4 बजे कथा शुरू होगी, अनाउंसमेंट करना कि 4 से लेकर 9 बजे तक कथा है, बीच में से कोई नहीं उठेगा, यहीं बैठे रहेंगे, आप सब ब्राह्मण हैं, सुंदर कथा चलेगी, यहीं की यहाँ सब बैठे रहिए, कोई बीच में उठ के नहीं जाएगा। बोले ठीक है अनाउंसमेंट हो गई, 4 बजे कथा शुरू हुई, 6 बजे लोगों में हलचल मचना शुरू हो गए, उठ के जाने लगे लोग इधर उधर, और देखा सब उठ के गए। 7:30 बजे राजा खुद आया, देखा मुश्किल से 10% लोग बैठे हैं। बोले बाकी लोग कहाँ हैं। बोले जाके देखो पीछे, जब पीछे देखा सब गांजा और चिलम पी रहे थे। तो बोले ये हैं तुम्हारे ब्राह्मण हैं। तो उस समय ऐसी स्थिति थी, आप कल्पना कीजिए कितना धोखेबाजी चल रही थी और लोग धोखा खा रहे थे। तो इसलिए श्री भक्ति सिंह ठाकुर महाराज को बहुत रोष था कि सब के सब ये चीटिंग जो रिलीजन है इसको पूरा झाड़ू मार के साफ कर देना चाहिए। और साथ ही साथ में जो उनके शिष्यों के अंदर भी थोड़ी सी भी ऐसी मानसिकता आ जाती थी तो उसकी खूब आलोचना करते थे। वो चाहते थे कि उनके शिष्यगण बहुत सही स्तर उपस्थित करें प्रस्तुत करें। एक बार उनके एक ब्रह्मचारी थे जिसका नाम था भूषण ब्रह्मचारी, वो एक बड़े उच्च ब्राह्मण कुल से आया था। उसको एक बीमारी थी, एक फोबिया था, दिन में 5 या 6 बार स्नान करता था, बार बार हाथ धोता रहता था, बहुत सफाई का ध्यान रखता था। तो एक बार भक्ति सिंह सरदार महाराज कथा कर रहे थे, देखो भूषण ब्रह्मचारी नहीं है, तो ढूंढते हुए गए, मानसर स्नान कर रहा है। तो बोले तुम मेरी कथा में नहीं आए और स्नान कर रहे हो, आपको मालूम है कलयुग का धर्म चैंटिंग है, बेदिंग नहीं है, स्नान करना नहीं है, अपने आप को साफ रखना अच्छा है लेकिन ये नहीं कि हमेशा रोज ही स्नान करते रहो। खूब उसको डांटा। फिर उनके जो सन्यासी जाते थे बाहर भिक्षा मांगने, तो एक सन्यासी, कुछ सन्यासी नए नए तरीके अपनाते थे भिक्षा लाने के लिए। तो एक सन्यासी उस शहर के इनकम टैक्स ऑफिसर के पास चला गया, बोला अब दोनों इकट्ठे चलते हैं एक मारवाड़ी मार्केट में रेड करते हैं, आप साथ में रहेंगे तो ज़्यादा लक्ष्मी मिलेगी। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला नहीं मुझे ठीक नहीं लग रही है बात, मैं नहीं जाऊँगा। तो बोला ठीक है अपनी गाड़ी दे, आपकी गाड़ी सफिशियंट है, पर्याप्त है। बोला ठीक गाड़ी ले जाओ। तो गाड़ी आ गई इनकम टैक्स ऑफिसर की, सारे मारवाड़ी बाजार में हलचल मच गई, आज तो हो गया रेट बढ़ेगा। तो गाड़ी रुकी, बीच में से निकला एक सन्यासी, ये क्या चक्कर है। तो बोले क्या करेंगे। तो सन्यासी आए, बोले बोले 10 बोरी चावल की दे दो। बोले थोड़ा सस्ते में छोड़ के ले जाओ। तो ऐसे हर एक दुकान में जाके खूब उन्होंने अन्न इकट्ठा कर लिया और पूरी गाड़ी भर के मठ पे लाए, देखो क्या लाया हूँ मैं। और जब भक्ति सिंह सरदार महाराज को मालूम चला उनको बहुत दुख हुआ और उन पर क्रोध किया, उनको ये सही तरीका नहीं है, तुम्हें जो भिक्षा लेनी है अपने ब्राह्मणों के गुणों को दिखाकर प्रदर्शित करके भिक्षा लेके आनी है। और उन्होंने क्या किया, पूरा दिन का उपवास रखा, विजडम से प्रोटेस्ट कर देते। और फिर उनके एक दूसरे शिष्य थे पूरी महाराज, वो भिक्षा लेकर आए। बोले कितनी भिक्षा लाए हो। बोले 2 मुठ चावल लाया हूँ खाली। बोले बस इतना ही मिल पाया। कहते ये गौर निताई को ज़्यादा प्रसन्न करेगी क्योंकि इसने सत्य के आधार पर ये इकट्ठा किया। तो जब हम भिक्षा मांगने जाते हैं तो गुरु के लिए हमें भिक्षा मांगनी पड़ती है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना पड़ता है, तो हमें सत्य के आधार पे करना चाहिए, है ना। ये गलत अंडरस्टैंडिंग है बाय हुक और क्रुक डिस्ट्रीब्यूट बुक, है ना। ये स्लोगन था बाय हुक और क्रुक का मतलब ये था कि किसी ना किसी ढंग से अपनी बुद्धि का उपयोग करके इस बुक को उस व्यक्ति के लिए रेलेवेंट बनाओ। ये नहीं भाई हुक और क्रुक कुछ ना कुछ चालबाजी करके उल्टा सीधा करके ये किताब उसको थोप दो, नहीं, क्योंकि इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। और उन्होंने बोले अपने अच्छे गुणों को प्रदर्शित करके आप लोगों के हृदय को द्रवित करो और उनसे आशीर्वाद के रूप में भिक्षा भी करो, तो ये अति आवश्यक है। इसी ढंग से एक सन्यासी मुंबई में गए और एक बहुत बड़े रिच इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, और उसने बहुत सुंदर फीस्ट लगा दिया आगे, आईएएस को आदर कीजिए। वो खा ही नहीं रहे, बोला दीजिए ना, वो बड़ा दिखा रहे, मैं बहुत चिंता में हूँ। बोले क्या हो गया? बोला हमारा नवदीप में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए हैंडपंप चाहिए। बोले हैंडपंप चाहिए तो उसका प्रसाद पाने से क्या संबंध है? बोले मेरे को इतनी चिंता है, मैं खा ही नहीं पाऊंगा। बोले आपकी चिंता कैसे दूर होगी? बोले पहले आप ये आश्वासन दीजिए कि आप हैंडपंप लगाएंगे, तभी मैं प्रसाद पा पाऊंगा। तो उसकी जो पत्नी थी वो घबरा गई, अरे साधु बिना खाए जाएंगे तो घर में अमंगल हो जाएगा, बोल दो ना हम हैंडपंप लगा देंगे। प्रेशर डालो पत्नी ने पति के ऊपर। पति ने बोला हाँ ठीक है, हम हैंडपंप लगा देंगे, स्वामी जी आप प्रसाद दो पाइए। बोले ठीक है, आपने आश्वासित कर दिया, अब मेरा मन शांत हो गया, अब मैं खाऊंगा। तो खाए और वापिस आके बोले हैंडपंप स्पॉन्सर हो गया, बहुत बड़ी बात है। तो कैसे स्पॉन्सर कराया, ये तरीका बताया। तो भक्ति सिंह ठाकुर महाराज को बहुत गुस्सा किया, बिल्कुल ठीक नहीं है ये। इस तरह की तिकड़मबाजी से मूर्ख बनाकर हम ऐसे धन इकट्ठा करना, ये उनको बिल्कुल भी भाता नहीं था, है ना। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है इसमें, है ना। द मीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, किस तरीके से हम सेवा करते हैं वो बहुत विशिष्ट है, भगवान भाव ग्राही है ना। इसी ढंग से एक उनके बहुत एक निकट का शिष्य था, उनकी माँ का देहांत हो गया, तो वो जब अंतिम क्रिया करने गए तो भक्ति सिंह सड़क हमारे उनको बताया कि देखिए सम्राट तरीके से कर्मकांडी तरीके से मत करना, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जो शतक्रिया दीपिका है उसके अनुसार आपको संस्कार करने हैं। और साथ में उनको चिट्ठी भी लिखी अलग से, सावधान रहना, तुम मेरे सबसे प्रमुख शिष्य हो, तुम जो करोगे सबके लिए उदाहरण स्थापित होगा, डरना मत, वैष्णव तरीके से संस्कार करना। लेकिन उस तरह समाज का इतना ज्यादा उस पर दबाव था, उसने जो अंतिम संस्कार किया अपनी माँ का वो कर्मकांडी तरीके से किया। जब ये मालूम चला भक्ति सिंह महाराज को तो उनको बहुत दुख पहुंचा, और फिर उन्होंने कहा दिस इज नाउ द बिगनिंग ऑफ एंड ऑफ गौड़िया मठ, क्योंकि जो मेरा सबसे प्रमुख शिष्य था उसी को बात समझ में नहीं आई कि शुद्ध भक्ति क्या है और शुद्ध भक्ति में मिश्रित भक्ति क्या है, तो आगे इसका क्या भविष्य है। तो इसलिए वो बहुत पर्टिकुलर थे कि संदेश बिल्कुल शुद्ध जाना चाहिए। उनका कहना था कि अगर कोई शुद्ध भक्ति के संदेश का पालन नहीं कर रहा तो उसका जीवन बिल्कुल अमंगलमय ही है, और जो जो उसको फॉलो करेंगे उनके जीवन में कभी मंगल आ ही नहीं सकता। अन्य अभिलाषिता शून्यम, यही एकमात्र तरीका है अपने जीवन में मंगल लाने का, ये इसका उनका पूरा कन्विक्शन था, और अपने डिसाइपल से वो यही अपेक्षा करते थे। और इसी ढंग से राष्ट्रवादी, उसमें राष्ट्रवाद बहुत, भारत को आजाद कराना है, महात्मा गांधी का एक तरफ आंदोलन चल रहा था, सुभाष चंद्र बोस जी का एक तरफ आंदोलन चल रहा था। तो 1931 में एक बार मिदनापुर में अकाल पड़ गया, और सभी कांग्रेस के वर्कर्स को मालूम चल गया कि ये जो गौड़िया मठ है इनके इन्होंने लाखों रुपए इकट्ठे किए हैं और ये डायरोमा कोई एग्जीबिशन लगाने वाले हैं, और इनके पास बड़ा देसी घी इकट्ठा किया हुआ इन्होंने, यहाँ लोगों के पास खाने को नहीं है और ये देसी घी चला के भगवान के मूर्ति के आगे दिया जलाते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। तो सारे जो ये स्वतंत्रता सेनानी थे गौड़िया मठ के आगे इन्होंने धरना दे दिया और नारे लगाने शुरू कर दिए, 3 दिन तक नारे लगाते रहे। तो इनके वर्कर बाहर गए, बोले क्या बात है? बोले जो घी है बाहर निकालो, लोगों को खिलाओ, ये दिया क्यों जला रहे मूर्तियों के आगे। तो गौड़िया मठ के भक्तों ने उत्तर दिया, ये जो सारा घी है सारी संपत्ति है जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए है, आपके महात्मा गांधी के चरखे के पहिए को लुब्रिकेंट करने के लिए नहीं आए। सीधा, और फिर बोला अगर आपके नेताओं को आके मिलना है तो आकर बात करें, है ना। तो फिर सुभाष चंद्र बोस जी आए, और भक्ति सिंह ठाकुर महाराज की बहुत ऐतिहासिक ये मीटिंग है। तो सुभाष चंद्र बोस जी को उन्होंने बताया, भैया उन्होंने कहा अकाल पड़ा हुआ है। भक्ति सिंह ठाकुर महाराज ने बोला अकाल तो हरि कथा का है। बोले आप जो कलेक्शन कर रहे हो, कहीं देश में बाढ़ आ रही है उसके लिए कलेक्शन करो, बड़े जन्म मृत्यु के सागर की बाढ़ है उसको कौन रोकेगा। तो उन्होंने बोला कि हमारे जीवन का उद्देश्य है पूरे इस मानव समाज में जो लोग दुखी है उनका उद्धार करना, मतलब दुखी उद्धार करने का एक ही तरीका है, जन्म मृत्यु के चक्कर से उनको रोका जाए। तो फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, तुम्हारे पास इतने इतने यंग लड़के हैं, सबके सब इतनी शक्तिशाली एनर्जेटिक हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या कहाँ लगा रखे हैं, दो मुझे दो, मैंने नेशनल आर्मी बना रखी है, मुझे चाहिए ये लोग। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप नेना या तो ले जाओ, लेकिन अगर इनको कुछ हो गया, इनके शरीर से कुछ भी खून की एक बूंद भी निकली, तुम्हारा सारा का सारा मिशन समाप्त हो जाएगा। बोले तुम क्या समझते हो, तुम भारत से हो, अगर तुम्हारा अगला जन्म ब्रिटेन में हो गया, तुम ही आकर भारत में शासन कर रहे होगे। बोले कृष्ण पर निर्भर रहो, जब अंग्रेजों को जाना होगा चले जाएंगे, है ना, और इससे इन लड़कों को यही रहने दो, ये वैसे दुबले पतले से क्या करेंगे, इनको अपना भक्ति करने दो, ये तुम जाने जो करना है करो। तो सुभाष चंद्र बोस बड़े परेशान होकर वापस चले गए, और जब उनको छोड़ने आ रहे थे भक्त कोड़िया मठ के इनके शिष्य भक्ति सिंह सुरेंद्र मार्ग के शिष्य, तो सुभाष चंद्र बोस अपने साथ के लोगों से कह रहे थे, मेरे मन में कभी भी किसी साधु के लिए कोई आदर नहीं था, लेकिन जब मैं इस साधु से मिला हूँ, इसमें इतनी शक्ति है, ये पूरे भारत का उद्धार कर सकता है। तो सुभाष चंद्र बोस तो पूरे एक पक्के राष्ट्रवादी थे। इनके पिता थे, इनका नाम था जे एन बोस, जगदीश नाथ बोस शायद था, तो वो बहुत बड़े वकील थे अपने समय के, और उनको मांस खाने की आदत थी, मीट खाते थे, और उनके घर में मुसलमान कुक थे जो मीट बनाते थे, और वो रहते थे कटक में। तो जब भक्ति सिंह सुरेंद्र ठाकुर को मालूम चला, तो उनको प्रचार करना शुरू किया, उनके पास गए, उनको समझाया, उन्हें मीट छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, कटक के अपने गोड़िया मठ को आदेश दिया कि प्रतिदिन राजभोग का डब्बा टिफिन में पैक होकर इनके घर में आएगा। 10 साल तक लगातार प्रतिदिन सुभाष चंद्र बोस जी के पिता के घर में डब्बा आता, और वही करता वही वेशन करना। प्रसन्न हुए उड़ीसा के, तो वो हाथी उन्होंने घोड़े को किन्ना दी। तो ये एक उन्हें तो कुएं में और बाजू को ऊपर करो, मैं तो आसानी से नहीं जा पे, ऐसा चले कंठ आता था, मच्छी को भी भगवान, ये तो गंगार फल है, तो करेंगे ही करेंगे। इस तरह के ब्रह्मचारी एक्सेप्शन है कि बच्चे से पूछे, देखो तुम्हें रात था एक बार बी आर टीम इनका पढ़े थे, उनके बदमाश मिशन परम खड़ हो गए और पड़े इनको, और अगले दिन फड़ गया, बोलेगा मैं वैसे परमेश्वर से शिकर तो शास्त्रों में जाके शिकायत कर, हमको इतना शट दर्शन देखोगे सही। तो इसको शास्त्र और तीन वैभव पढ़ थोड़ा सा बता रहे हैं कि हर एक, इसके बाद मुसमा ज्यादा बढ़ गया, तो एकादशी प्यारे गोस्वामी जी को भेजा ना, कृष्ण ने भक्त अति चतुर, उन्होंने क्या किया, एक लिस्ट बनाई कि किस किस फ्राइडे को एकादशी आती है, और वहां के फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गए, बोले देखिए आप शुक्रवार को छुट्टी करते हैं, फ्राइडे को छुट्टी करते हैं, तो हिंदुओं में फ्राइडे का मतलब एकादशी है, ये देखिए एकादशी लिखा हुआ हमारे कैलेंडर, एकादशी एकादशी एकादशी। तो बोले क्या चाहते हो, बोले आप सर्कुलर दे दो कि एकादशी के दिन छुट्टी है, ठीक है सर्कुलर दे दिया एकादशी के दिन छुट्टी। तो भक्ति सिंह श्रवण बहुत प्रसन्न हुए कि ठीक है एकादशी के दिन समय मिलेगा सबको अगर ज्यादा से ज्यादा श्रवण कीर्तन करने के लिए। तो इस प्रकार से वो बहुत क्रांतिकारक प्रचारक थे और कुछ भी करने को तैयार, और वह एक आचार्य थे और चैतन्य महाप्रभु के संदेश को स्थापित करने के लिए कुछ भी नए तरीकों को स्वीकार करने के लिए तैयार थे, इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। भक्ति कोई अंधा प्रोसेस नहीं है कि अंधाधुन चलते रहो, स्टीरियोटाइप चीज है, ऐसे ही होगा, नए नए तरीके वो अपनाते थे किसी ना किसी ढंग से इस संदेश को नए नए लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इसके लिए उनको बहुत सी आलोचना सहनी पड़ी। वो चाहते थे कि इससे पहले जो वैष्णवगण थे वो ज्यादा भीड़ भाड़ के क्षेत्र में नहीं जाते थे, शहरों में नहीं जाते थे, जैसे शट गोस्वामी एक रात एक पेड़ के नीचे फिर दूसरे पेड़ के नीचे, सादा जीवन, पुराने कपड़े, गरीबी का जीवन दिखता था। तो भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर ने कहा अगर हमें चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पृथ्वी चाते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम, इसको स्थापित करना है तो ये तरीका नहीं है, हमें सब कुछ जो आधुनिक है उसको यूज करना पड़ेगा भगवान की सेवा में। और अपने आप को लोगों के लिए आकर्षित बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब अंग्रेजों का राज्य हो गया था, ये दरिद्र ब्राह्मणों से कोई आकर्षित नहीं होगा, हमें अपने आप को बिल्कुल अप टू डेट रखना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि हम लोग ज्यादा जेंटलमैनली दिखने चाहिए, हम लोग ज्यादा स्टाइलिश दिखने चाहिए, हम लोग ज्यादा नॉलेजेबल दिखने चाहिए। इसलिए उन्होंने शिष्यों को बोला अच्छे कपड़े डालो, अच्छी गाड़ियों में डालो, अच्छी भाषा का उपयोग करो, अच्छे ढंग से पढ़े लिखे होकर बात करो, अच्छा खाओ, ताकि आप लोगों को पहले आकर्षित कर सके। जो एक भौतिकवादी व्यक्ति है, जब तक आपसे आकर्षित नहीं होंगे, आपको आदर नहीं देंगे, आपका संदेश क्या सुनेंगे। तो उनको आदर प्राप्त करने के लिए आपको पहले अपने आप को आकर्षक बनाना पड़ेगा। ये फटे पुराने कपड़ों में घूमने से कुछ नहीं होगा। बोले गरीबी का जीवन ना तो भगवान को प्रसन्न करता है, ना आपके मिशन को पूरा करेगा। केवल अपने झूठे वैराग्य को दिखाने के लिए ये कोई आवश्यक नहीं है। और बोलते थे जो संसार की सबसे उत्तम वस्तु है, इसका पहला उपयोग करना चाहिए किसको? साधुओं को। केवल साधु ही जानते हैं कि इस चीज का सही उपयोग क्या है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश में उतरे एयरपोर्ट पे, तो एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि ये टेक्नोलॉजी के बारे में आपका क्या कहना है। प्रभुपाद बोला टेक्नोलॉजी यूजलेस, वो बहुत खंडन किया मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। तो वो रिपोर्टर मुस्कुराया, बोले स्वामी जी अभी तो आप एरोप्लेन यूज करके आ रहे हैं, सो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट एरोप्लेन। प्रभुपाद ने बोला इट इज यूजलेस। तो फिर बोला कि आप क्यों यूज कर रहे हैं इसको? टू मेक इट यूजफुल। तो इसीलिए भक्ति सिंह स्वामी महाराज भी यही कह रहे हैं, संसार की सबसे उत्तम वस्तु सबसे पहले किसके पास जानी चाहिए? साधुओं के पास। क्योंकि साधु ही जानते हैं कि इसका उपयोग वो कैसे भगवान की सेवा में कर सकते हैं, बाकी लोग तो अपनी इंद्र तृप्ति में करते हैं। इसलिए कई लोग जो नास्तिक लोग थे वो खंडन करते थे, अरे कैसे साधु हो, क्या बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूम रहे हो। अभी भी हमें सुनना पड़ता है ना, एक बार हमारी नई नई स्कॉर्पियो गाड़ी आई थी, चेरी रेड कलर के चमकती हुई गाड़ी, और बड़ी गाड़ी गई वहाँ पे पंजाबी, वहीं कहीं रुकी, बीच में से कर्मचारी निकले हो निकल के, और ड्राइवर से पूछा, एक सरदार जी आए स्कूटर पे, पुराना स्कूटर था, तो उससे पहले गाड़ी की परिक्रमा की। वो हैरान हो गया कि अरे इसमें से इतनी बड़ी गाड़ी में से एक धोती डाला हुआ गंजा कर्मचारी निकल रहा है, क्या है? तो उसने ड्राइवर से पूछा कि किराए की है टैक्सी है? बोले नहीं मंदिर की है। बोले कितनी गाड़ी? कहते चार लिए अभी अभी। परेशान हो गया, उसने पंजाबी अपने आप को ही गाली दी, कहते पागल हो यार मैं कर क्या रहा हूँ, बड़ी ऐसी घूम रहे बड़ी बड़ी गाड़ी। तो जो नास्तिक लोग होते हैं वो कहते हैं साधुओं को जंगल में रहना चाहिए, फटे पुराने कपड़े डालने चाहिए, क्या टिट फिट होकर घूमते रहते हैं, लैपटॉप लेके बढ़िया स्मार्टफोन लेके घूमते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, क्या है? वो पूछते थे आपने गोड़ियाबंद इतना बड़ा क्यों बनाया? तो भक्ति सिंह ठगमार कह रहे थे क्या चाहते हो, वैशाल्य बड़े बड़े बने? बोले आप गाड़ियां क्यों यूज करते? बोले आप क्यों बड़ी बड़ी गाड़ियां यूज करते? तो भक्ति सिंह ठगमार कहते हैं कि हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना है। वो एक सांप का न्याय देते थे कि सांप कभी भी अपना बिल खुद नहीं बनाता, दूसरे के बिल बना होता है, आराम से जाके उसमें रहता है। इसी ढंग से सारे के सारे आविष्कार करने दो इन वैज्ञानिकों को, करो जो आविष्कार, अपना रात दिन एक करो, मेहनत करो। जो वैष्णव है आराम से, लेजी इंटेलिजेंट, आपने जो बनाया उसको हम यूज करेंगे। कितनी मेहनत करने पड़ते हैं, एडिसन ने कितनी बारी किया बल्ब के लिए, 10,000 टाइम बार बेचारा लगा रहा है एक छोटा सा बल्ब, हमें क्या बल्ब ले लेंगे यूज कर लेंगे, है ना। जैसे प्रभुपाद के पास एक योगी आए थे, एक बार बोले बहुत तपस्या की योग किया, बोले अब क्या कर लेंगे? मैं पानी के ऊपर चला जाऊंगा, यमुना पार कर लूंगा, आ जाऊंगा। प्रभुपाद कहते 125 देके कर लूंगा मैं तो, इतने नाव में बैठूंगा 125 लगेगा, इतनी तपस्या करने की क्या जरूरत है। तो बुद्धि का उपयोग, युक्त वैराग्य। प्रभुपाद भक्ति सिंह सेठ महाराज कहते हैं जब तक कोई ये नहीं जानेगा कि हर चीज का उपयोग कैसे भगवान की सेवा में करना है, वो भगवान से प्रेम विकसित नहीं कर पाएगा। When Krishna is all good, his energies are all good. आप किसी एनर्जी का तिरस्कार कैसे कर सकते हो? तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर महाराज ने क्रांति लाए। सब लोगों ने इतनी आलोचना की उनके, वो पहले सन्यासी थे जिन्होंने सिले हुए कपड़े डाले, ओवर कोट डाला। वो पहले सन्यासी थे जो गाड़ी में बैठ कर गए, सन्यासी पैदल चलते थे नंगे पाव, कोट डाला, हैट डाले। तो सबने बोला कैसे सन्यासी हैं, ये तो दूषित हो गए हैं, दूषित हो गए हैं। तो कई बार उन्होंने, वो ऐसे सन्यासी थे जो राजा को इन्वाइट करते थे, अंग्रेजी गवर्नर्स को इन्वाइट करते थे, और उनको एंटरटेन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर कृष्णा। तो एक बार भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी महाराज ने बोला, आप जो ये सब कर रहे हैं लोग तो आपकी बहुत आलोचना करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर ने उत्तर दिया, ये सारी प्लानिंग मैं पिछले 1000 जन्मों से पहले कर चुका हूँ, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, 1000 जन्म पहले मैंने प्लानिंग कर ली थी। तो बोले चैतन्य महाप्रभु का संदेश को सब जगह तक पहुंचाना है, इसके लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। तो उस समय गोड़िया मठ के पास 4 गाड़ियां थी कलकत्ता और बायापुर में, और इन गाड़ियों का उपयोग करते थे ब्रह्मचारी और सन्यासी कलेक्शन के लिए, प्रीचिंग प्रोग्राम्स के लिए। हाथी थे, घोड़े थे, और एक बार एक भक्ति सिंह सेठ महाराज पटना में गए तो वहां उन्होंने ऊंट देखा, बोले इस जीव को भी चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगाना चाहिए इतना बड़ा जीव है, तो ऊंट भी ले लिया और जब प्रोसेशन निकलता था, हरिनाम संकीर्तन परिक्रमा होती थी, ऊंट घोड़े हाथी सब चलते थे। और बताया था जब बाग बाजार में कलकत्ता में गोड़िया मठ था, वहां के जो घोड़े थे इतने हृष्ट पुष्ट थे, सब बंगाली बोलते थे घोड़ों को तो मालपुआ खिलाया जाता है, इतने हृष्ट पुष्ट कैसे हो। तो इस प्रकार से उनको मालूम था, क्योंकि अब अंग्रेजों का राज्य है तो अंग्रेजों को पकड़ना पड़ेगा, इसलिए अंग्रेजी लाइफस्टाइल को उन्होंने अपनाया, और वो इतनी सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश बोलते थे ताकि अंग्रेज लोग प्रभावित हों और उनको आदर दें, और तब उनका संदेश आगे जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ वो अपने भक्तों को सावधान भी करते थे कि युक्त वैराग्य के नाम पर आप इंद्र तृप्ति ना करें। युक्त वैराग्य के लिए एक चीज बहुत आवश्यक है, उन्होंने कहा स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी, आध्यात्मिक रूप से ईमानदारी, है ना। स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी नहीं है तो फिर आप जो मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड तरीकों को, मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड नॉलेज को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी मिक्स्ड विद मॉडर्न सोफिस्टिकेशन, इससे जो पैकेज होगा वो सबके लिए आकर्षक होगा। लेकिन आध्यात्मिक ईमानदारी नहीं है तो फिर क्या होगा, भक्ति के नाम पर भोग होगा। तो इसलिए ये बहुत एक डेलिकेट थिन लाइन है, इसके लिए बहुत सावधान। तो श्री भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर महाराज ने क्रांति लाई। 1935 में एकमात्र रेडियो स्टेशन था इंडिया में, वो था कलकत्ता में, और पहली बारी कलकत्ता रेडियो से हरि कथा का प्रचार हुआ। उस समय आप देखिए क्या रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट। अभी भी हमारे इस्कॉन के पास अपना सरकारी मीडियम पे कभी कभी दूरदर्शन में कुछ आ जाता, विकेश कुमार प्रभु का इंटरव्यू आया था नेशनल चैनल पे, बहुत रेयर रेयर घटनाएं होती हैं। 1935 में एकमात्र रेडियो स्टेशन से ही हरी कथा हुई, और खाली हरी कथा ही नहीं, उसके बाद भक्तों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। जून 1935 में उन्होंने सारी घोषणाएं कर दी, आने वाली जन्माष्टमी की, राधा अष्टमी की, भक्तिविनोद ठाकुर की आविर्भाव तिथि की सारी घोषणाएं कर दी, मौका मिलता है सब कर दो। और लोग उनसे पूछते थे कि आपने इतने महंगे महंगे मंदिर क्यों बनाते हो। रूप गोस्वामी ने तो भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि बड़े मंदिर नहीं बनाने चाहिए, इससे भक्ति से ध्यान हट जाता है। तो शिला भक्ति सिद्धांत सेठ महाराज उत्तर देते थे, ये हर एक की व्यक्तिगत सामर्थ्य पर, उसकी कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है। कई लोग पूरे पूरे साम्राज्य को संभालते हैं फिर भी उनके पास फुर्सत होती है हरी कथा सुनने की। कई बार एक छोटे से परिवार को भी नहीं संभाल पाते, संभालने में पूरा समय निकाल देते हैं। तो अगर किसी के पास क्षमता है तो उसको बड़े बड़े मंदिर बनाने चाहिए, लेकिन हरी कथा पे कोई, श्रवण कीर्तन में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से युक्त वैराग्य ये पहले आचार्य हैं। इससे पहले भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भी युक्त वैराग्य के लिए कहा, लेकिन श्रीला भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर महाराज इसको पूर्ण रूप से स्थापित कर पाए, और श्रीला प्रभुपाद जी ने इसको आगे और बढ़ाया। श्रीला भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर महाराज ने एक पूर्ण से प्रकार से सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने शूद्रों को भी दीक्षा दी, और इसलिए जब वो वृंदावन में गए तो सब ब्राह्मणों ने अपने अपने मंदिर के द्वार बंद कर दिए, इन पे पथराव किया। केवल एक राधा रमन जी का मंदिर था जिन्होंने इनको परमिशन दी अंदर आने के लिए। और शिला प्रभुपाद जी ऐसे वेस्ट पाश्चात्य देशों में गए, उन्होंने मलेशिया और यमुनों को दीक्षा दी। तो जब वो वृंदावन में आए तो काफी जात गोसाई उन्होंने इनका खंडन किया। लेकिन हम देखते हैं कि ये वास्तव में युक्त वैराग्य है, हर किसी को भगवान की सेवा में लगाना, जो भी धन है, जो भी योग्यताएं हैं, जो भी यश है, धन, स्त्री, यश, फैसिलिटीज, सबका सब भगवान की सेवा में। लेकिन इसके लिए चाहिए एक स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी, स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स। श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज ने खूब अच्छी इंस्ट्रक्शंस भी दी, विशेषकर हरिनाम के ऊपर। वो कहते थे कि हरिनाम का अगर हम श्रद्धा पूर्वक और अपराध रहित जप करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सब सिद्धि प्राप्त होगी, और जोर से और ध्यान पूर्वक जप करने से हम अपने सारे अनर्थों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। एक बार एक पंडित जी उनके पास आए, बोले आप क्या हो इतना जप करते हो, ये जप तो नौ सिखियों के लिए है, आपको इतने महान भक्तों आपको जप करने की आवश्यकता है। तो भक्ति सिद्धांत सेठ महाराज ने उनको कथा सुनाई। एक छोटा बच्चा था जो अपनी माँ से ABC सीख रहा था, 10 साल के बाद माँ ने देखा कि वो अल्जेब्रा की वो इक्वेशन सॉल्व कर रहा है, वही ABC लिख रहा है। बोले अरे अभी तक ABC कर रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं माँ, ये दूसरा है, ये हायर अल्जेब्रा है। तो बोले अगर तुम अपने बच्चे का नाम रोज पुकारते हो, कभी थकते हो, रोज अपने बच्चे को पुकारते हो, इसी ढंग से हम रोज कृष्ण को पुकारते हैं, हम थकते नहीं हैं, हमें नई शक्ति मिलती है। तो इस ढंग से हरि नाम के ऊपर उन्होंने बोला। वो चाहते थे अपने शिष्यों से, चाहे वो मठ में रहने वाले हैं या ग्रस्त हैं, कितनी माला करें, 64 माला करें। तो किसी ने उनको बोला कि कैसे करें 64 माला, सेवा भी होती है, जप नहीं हो पाता 64 माला, हो नहीं पाता। तो भक्ति सिद्धांत सेठ कुमार ने बहुत सही बात बताई, बोले ये मत सोचो कि सेवा से आपका टाइम जाता है या ज़्यादा जप से आपका टाइम जाता है, आपका टाइम वेस्ट होता है प्रजल्पा से। प्रजल्पा बंद कर दो, सेवा भी करोगे और 64 माला भी कर पाओगे, ये उनके आदेश थे। और उनका कहना था कि बिना हरि गुरु और वैष्णव की सेवा के जप का कोई लाभ नहीं है, ये जप केवल बाहरी बाहरी रह जाएगा। भगवान की सेवा, अर्च विग्रह की सेवा, गुरु की सेवा और वैष्णव की सेवा। भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर महाराज कहा करते थे कि हरि नाम हमारा जीवन है, द होली नेम इज अवर लाइफ। इसका अर्थ ये हुआ कि जितनी हमारे जप की क्वालिटी होगी वैसी हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। हम अपनी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें अपने जप की क्वालिटी को इम्प्रूव करने पर ध्यान देना चाहिए। शिला भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर महाराज कहते हैं कि जस्ट डोंट बी इंटरेस्टेड इन फिनिशिंग योर कोटा, चलो ये 16 माला कोटा पूरा करना है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम चैंटिंग अटेंटिवली करें, ध्यानपूर्वक करें, सुनने का प्रयास करें। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी उनकी हरिनाम के ऊपर। भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर महाराज ने खूब प्रोत्साहन दिया पुस्तकों के प्रकाशन को, बृहत मृदंग। उनकी इतनी रुचि थी मठ के अंदर प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने स्थापित की, मठ के अंदर और मठ के लोगों के अंदर प्रिंटिंग प्रेस है। और बहुत खुश होते थे जब कोई ब्रह्मचारी एक पत्रिका भी बांट के आता था, उसका आलिंगन कर लेते थे। तो अगर हम भगवत गीता का वितरण कर रहे हैं तो भक्ति सिन्हा सेठ ठाकुर महाराज कितने प्रसन्न होते हैं। तो ये वास्तव में हमारा फैमिली बिजनेस है। शिला भक्ति सिन्हा सेठ ठाकुर महाराज ने शिला प्रभुपाद जी को बहुत आदेश दिया कि राधा कुंड के तट पे 1932 में जब भी आपको धन प्राप्त हो आप पुस्तकें छापना और इसको बांटना। और श्रील प्रभुपाद जी ने इस आदेश को अपना जीवन माना और यही हमारी गुरु परंपरा है। ये नहीं कि प्रभुपाद जी ने पुस्तक वितरण पर जोर दिया है, पूरी गुरु परंपरा पुस्तक वितरण पर जोर देती है। और श्रील भक्ति सिन्हा सेठ ठाकुर महाराज बहुत ही एक्सपर्ट प्रूफ रीडर थे, बहुत जल्दी गलती पकड़ लेते थे। तो एक शिष्य ने बोला प्रभुपाद, भक्ति सिन्हा प्रभुपाद, यू आर एन एक्सपर्ट प्रूफ रीडर। उन्होंने उत्तर दिया कि बोला कि आई डोंट रीड बुक, आई रीड द ऑथर। फिर बोलते हैं कि मुझे भक्ति लोग ठाकुर जी ने बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया है। ही सेज आई एम नॉट ओनली अ प्रूफ रीडर ऑफ प्रेस ओनली, आई एम अ प्रूफ रीडर ऑफ वर्ल्ड, आई एम अ प्रूफ रीडर ऑफ रिलीजन, आई डिसेक्ट द फॉल्ट्स एंड ट्राई टू करेक्ट देम। मैं खाली प्रेस का ही प्रूफ रीडर नहीं हूँ, पूरे विश्व का प्रूफ रीडर हूँ। और जहां मुझे गलती देखती है मैं उसको पकड़ लेता हूँ और उसको ठीक करता हूँ। इसके साथ साथ उनके बहुत सुंदर सुंदर कुछ फर्स्ट टाइम्स हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत अगर कुछ कहने को। एक बार उन्होंने सुबह सुबह बहुत शक्तिशाली प्रवचन दिया वैराग्य के ऊपर, और प्रवचन देने के बाद वो अपने रूम में बैठे थे, कुछ लिख रहे थे और साथ में दो केले पड़े थे। तब एक बंदर आया, उसने दो केले उठा लिए। भक्ति सिंह से उठा, हमारे छड़ी पड़ी थी, वो छड़ी लेकर बंदर के पीछे भागे। जब भागे तो वो लिख रहे थे, स्याही गिर गई और बंदर के पीछे भागते बड़ी मुश्किल से केले लेकर आए। तो उनके शिष्य ने बोला, सुबह तो आपने इतना बड़ा प्रवचन दिया वैराग्य के ऊपर, ये दो केले के लिए आपने जो लिख रहे थे सारी स्याही गिरा दी ऊपर, इतना भागे बंदर के पीछे, ले आने दो केले होते। थोड़ा क्या उत्तर दिया, बोले केले हैं राधा रानी के और राधा रानी ने कृष्ण को अर्पण करना था, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये उनका दृष्टिकोण था हर चीज को देखने का। इसी ढंग से एक बार ही कुछ कॉलेज के छात्र उनके पास आए, बोले हम बार बार गलतियां करते हैं, फिर पछताते हैं, फिर गलती हो जाती है, फिर पछताते हैं, क्या है ये सब, क्यों हो रहा है? तो उन्होंने बोला, ये सब है आपकी हृदय की दुर्बलता, और हृदय की दुर्बलता दूर होगी साधु संघ से और साधु के आशीर्वाद से। साधुओं की सेवा करो, साधुओं का संग लो, तो हृदय की दुर्बलता दूर होगी। इसी प्रकार से तीन ब्रह्मचारी मठ में थे जो उनके पास है, भक्ति सिंह सट्टा कुमार के पास, और कहने लगे कि हम इतने साल से यहाँ पर हैं, हमें लगता नहीं हम भक्ति में तरक्की कर रहे हैं, बहुत 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 अपने आप में गिलानी हो रही है। तो भक्ति सिंह सट्टा कुमार ने पूछा, सही में आपको लगता है कि आपके पास भक्ति नहीं है? बोले हाँ, हमें ये लगता है हमारे हृदय में कोई भक्ति नहीं। तो भक्ति सिंह सट्टा कुमार ने कहा, देखो ठीक चल रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा होता कि तुम्हारे पास भक्ति है तो कुछ गड़बड़ती है। हमेशा ये लगना चाहिए कि हृदय में भक्ति नहीं है। तो ये सुनकर वो तीनों ब्रह्मचारी बड़े आश्वस्त हो गए और पूरा जीवन वो मठ में अपना जीवन बिताया। इसी ढंग से एक बार भक्ति सिंह सट्टा कुमार आसाम के एक गाँव में प्रचार करने जा रहे थे, तो उस घोड़ा गाड़ी तांगे में एक छोटा सा ब्राह्मण व्यक्ति, ब्राह्मण लड़का बैठा था। तो भक्ति सिंह सट्टा कुमार उसके साथ बैठे थे और पूरा रास्ते थोड़ा बात करते रहे, क्या नाम है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, बस इसके बाद उतर गए। केवल इतनी सी बातचीत का उस छोटे से बच्चे पर इतना प्रभाव पड़ा, उसका हृदय इतना शुद्ध हो गया। हालांकि घर वालों ने उसको बहुत रोकने के प्रयास किया, उसने घर से भाग के पूरा जीवन मठ में समर्पित कर दिया और बाद में एक सन्यासी बनकर उनका नाम पड़ गया था परम पूजनीय आश्रम महाराज, केवल एक छोटी सी मुलाकात से। तो जब शुद्ध भक्त ऐसी बातें भी करते हैं कई बारी जिसमें लगता नहीं कि वो डायरेक्ट भक्ति का आदान प्रदान है, बस उनसे हालचाल पूछा, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, लेकिन क्योंकि हृदय में शुद्ध भक्ति इतनी प्रगाढ़ होती है, वो सेवा की भावना इतनी प्रगाढ़ होती है कि वो सेवा की भावना दूसरे के हृदय में स्थानांतरित हो जाती है। और जो तथाकथित चीटर्स होते हैं, वो बड़ी बड़ी कथा भी क्यों ना करते रहे, लेकिन फिर भी लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता, और शुद्ध भक्त थोड़े से संपर्क मात्र से कितना परिवर्तन होता है। श्रीला भक्ति सिंह ठाकुर महाराज बहुत जोर देते थे शास्त्रों के सार को सही ढंग से समझने के लिए। वो कहते थे कि अगर थोड़ी सी भी फिलोसफिकल मिसअंडरस्टैंडिंग है तो क्या होगा, ये हमारे भोगने की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। तो इसलिए फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। थोड़ा सा भी डेविएशन हमारे भोगने की प्रवृत्ति, या तो कृष्ण को भोगेंगे या कृष्ण से अलग होकर भोगने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी। इसलिए एक बारी एक व्यक्ति ने सवाल पूछा कि आपके मठ में इतने लोग हैं लेकिन लगता नहीं कोई इतनी तरक्की कर रहा है, जीवन तो समर्पित कर दिया लेकिन ऐसी कोई तरक्की दिखाई नहीं दे रही। तो भक्ति सिंह सट्टा कुमार ने उत्तर दिया, हाँ बात आपकी ठीक है, अगर किसी के पेट में कीड़े हों तो अच्छे से अच्छा भोजन भी खाए तो पचेगा नहीं, तो अच्छी कथा भी सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन काम नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि कह रहे हैं कि दे हैव सम सीक्रेट बैड हैबिट्स, तो उसके कारण भक्ति में प्रगति नहीं होती। तो किसी व्यक्ति ने बोला, या आपके मठ में ऐसे लोग हैं जिनकी कुछ ऐसी गलत आदतें हैं और फिर आगे बढ़ भी न रहे, तो आप रखे क्यों, निकाल दो उनको। तो बोला, नहीं, आई स्टिल लव देम, अगर वो बाहर जाएंगे तो उनकी हालत और ख़राब हो जाएगी, तो यहाँ रहें, कुछ ना कुछ तो सुधार आगे करेंगे, और मैं उनको खो भी नहीं सकता, इनको अपना प्रेम था। भक्ति सिंह सट्टा कुमार महाराज बहुत सख्त थे, शिष्यगण उनके सामने जाते डरते थे। पूरे गौड़िया मठ में दो चीजें बड़ी फेमस थी, प्रभुपादेर दाल और प्रभुपादेर गाल। प्रभुपादेर दाल मतलब प्रभुपाद जी का प्रसाद, दाल प्रसाद, और प्रभुपादेर गाल मतलब उनकी डांट। दोनों ही बड़ी मीठी है। तो लेकिन साथ साथ वो भक्तों का बहुत ख्याल भी रखते थे। जैसे रात को सब विश्राम कर रहे हैं तो जाकर देखते थे सबके ऊपर मॉस्किटो नेट है कि नहीं, नहीं होती तो मॉस्किटो नेट टांग देते थे। सर्दी का मौसम होता था तो कंबल देते थे सबको। सबसे पूछते थे महाप्रसाद पाया कि नहीं पाया। एक बार एक भक्त को टीबी हो गया है ना, तो जो मैनेजर था उनको भेजने लगा अपने घर में। बोला नहीं घर मत भेजो, जो मेरा कमरा है वहाँ रख दो। तो अपने कमरे में उसको उन्होंने शरण दी और फिर बाद में पूरा सिख डिवोटीज के लिए एक नया आश्रम बनाया उन्होंने। तो इस ढंग से वो भक्तों का बहुत ख्याल रखते थे। एक बड़ी प्रसिद्ध स्टोरी आप सबने सुनी होगी, एक जगह वो डी टी इंस्टॉलेशन करने गए मंदिर में, तो वहाँ पे एक ब्रह्मचारी एक रात पहले मंदिर से चला गया था, उसका कुछ गलत व्यवहार था। तो भक्ति सिंह भगवान ने आते ही पूछा वो कहाँ है, तो बोले ऐसे ऐसे उसका कुछ व्यवहार ठीक नहीं था, कल हमने बहुत डांटा तो चला गया छोड़ के, आज समय नहीं मिल पा रहा क्योंकि आज इतना बड़ा फंक्शन है। भक्ति सिंह भगवान ने कहा कितना खून लगता है एक जीवात्मा को भगवान की शरण में लाने के लिए, एक जीवात्मा मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये सेरेमनी रुकी रहेगी जब तक वो नहीं आएगा, उसको ढूंढ के लाओ। तो फिर भक्त लोगों को मालूम चला कि उसके अंदर एक हुनर था घड़ी ठीक करने का, तो निश्चित उसे बोले किसी शहर की घड़ी की दुकान पे होगा। तो वहाँ पर गए, वो मिल गया, उसको पकड़ के लाए। वो जो भक्त बिल्कुल गदगद हो गया कि पूरे फंक्शन को रोक दिया मेरे कारण, जब तक वो नहीं आएगा फंक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। तो इतना एक एक भक्त को इतना महत्व दे देते हैं। इसके बाद उनका जो फाइनल पास टाइम 31 दिसंबर 1936 को उन्होंने शरीर छोड़ा और वो नित्य लीला में प्रवेश हुए। इससे 1.5 महीना पहले वो पुरी में थे और उन्होंने हिंट देना शुरू कर दिया था। वो नियमित रूप से गोवर्धन से प्रार्थना करते थे कि मुझे आप अपने तट पे शरण दें, मेरी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा करें। और फिर अपने शिष्यों को बोलते थे कि जल्दी से हरि भजन बहुत गंभीरता से करो, समय ज़्यादा नहीं रह गया। और उसके बाद 6 दिसंबर के आसपास वो कलकत्ता वापस आए और 6 दिसंबर कलकत्ता में आने के बाद उन्होंने अपने हर प्रवचन में ये बोलना शुरू किया कि हमें कैसे अनर्थों से जूझना चाहिए, पूजा प्रतिष्ठा लाभ से बचना चाहिए, वैष्णव अपराधों से बचना चाहिए, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो वो इस तरह का संदेश दे रहे थे कि जो आगे उन्होंने शिष्यों के लिए दिक्कतें आने वाली हैं, जो उनको अनर्थ सताएंगे, उस पर वो प्रवचन कर रहे थे। तो कुछ बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी जाते जाते जो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमेशा अपने अंदर देखो, अपने को ठीक करो, दूसरे की बुराइयों को मत देखो। फिर आगे कहा कि ये जो माया का संसार है इसमें हर कोई कृष्ण से विमुख है, तो हरि भजन के केवल 3 मित्र हैं, धैर्य, विनम्रता और दूसरों को आदर देना। धैर्य रखेंगे, विनम्रता का पालन करेंगे, दूसरों को आदर देंगे, तो इसमें हरि भजन में सहयोग मिलेगा। फिर उन्होंने बताया कि जब हमें दूसरों में बहुत दोष दिखाई दे रहे हो और दूसरों के दोषों से हम बहुत भ्रमित हो रहे हो, तो धैर्य रखो, अपने अंदर छान के देखो, अपने अंदर दोष देखो, दूसरों के दोषों से आपको इतनी हानि नहीं होने वाली जितना अपने दोषों से। फिर आगे लिखा, हर किसी निस्वार्थ कोमल हृदय गौड़िया वैष्णव भक्त को तैयार होना चाहिए 200 गैलन खून देने के लिए किसी एक आध्यात्मिक रूप से मृत जीव को जागृत करने के लिए। जो इस संसार में लोग हैं आध्यात्मिक रूप से मृत हैं, इनको आध्यात्मिक रूप से जीवित करने के लिए हर मठ के निवासी को निस्वार्थ होकर, बड़े सॉफ्ट हार्टेड होकर, पूरा पूरा अपना जीवन देने के लिए तैयार होना चाहिए किसी को आध्यात्मिक रूप से जागृत करने के लिए। इसके बाद से आप पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर इंस्ट्रक्शंस हैं, एक दो और पढ़ेंगे हम। उन्होंने बताया कभी भी कितने भी खतरे क्यों ना आ जाएं, कितना ही कोई अपमान क्यों ना करे, कितने ही तरह तरह की सजा क्यों ना मिल जाए, कभी भी भगवान की पूजा मत रोको, कभी भी हतोत्साहित ना हो, कि इस संसार में लोग कृष्ण का संदेश स्वीकार नहीं कर रहे और हर समय भगवान का गुणगान करते रहो हर परिस्थिति में। इस तरह से जब 31 दिसंबर का दिन आया सुबह सुबह उन्होंने अपने शिष्य भक्ती रक्षक श्रीदास स्वामी महाराज को बुलाया और उन्होंने कहा कि आप रूप गोस्वामी जी के गुणगान करते हुए नरोत्तम दास ठाकुर का लिखा हुआ जो प्रार्थना पुस्तक में भजन है वो गाओ। वो भजन कौन सा है? श्री रूप मंजरी पदा। तो वो भजन उन्होंने गाया और साथ में उनके एक और शिष्य थे नवीन कृष्ण विद्यालंकन, उनको बोला कि आप शिष्टाष्टकम गाइए। तो इस ढंग से ये भजन सुनते हुए उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया जो वहाँ पर उपस्थित थे और जो वहाँ पर उपस्थित नहीं थे और बोला कि हम सबका एकमात्र कर्तव्य और धर्म ये है कि हम हर परिस्थिति में भगवान और भक्तों की सेवा का प्रचार करते रहें। ये कहकर उन्होंने वो नित्य लीला में प्रवेश हुए और फिर उनके शरीर को लाया गया कलकत्ता में, उन्होंने शरीर छोड़ा था कलकत्ता से, फिर शरीर लाया गया जो सियालदह स्टेशन से कृष्णा नगर आया और कृष्णा नगर से गाड़ी में स्वरूपगंज में आया और फिर स्वरूपगंज से वो योगपीठ गए और फिर शिवा सांगन अद्वैत भवन, फिर जो उनका भजन स्थली था ब्रजपट्टनम जहाँ आज चैतन्या मठ है वहाँ पर गए, गोर किशोरदास बाबा जी की समाधि के आ गए और फिर वहाँ पर उनकी समाधि स्थापित की गई। आप ऐसे कितने भक्तों ने श्री भक्ति स्नान सठ महाराज की समाधि के दर्शन किए मायापुर में, तो वहाँ की समाधि स्थापित की गई। तो आज का दिन बहुत विशेष है, आज हम श्री भक्ति स्नान सठ महाराज से को प्रार्थना कर सकते हैं कि जैसे वो चाहते थे कि हम शुद्ध भक्ति का पालन करें बिना किसी मिश्रण के, बिना किसी एडल्टरेशन के और हर परिस्थिति में करें, तो हमें वो शक्ति प्रदान हो। जैसे वो कहते थे कि हरि नाम ही हमारा जीवन है और हरि नाम को हम ध्यान पूर्वक जप कर सके, हरि गुरु और वैष्णव की सेवा कर सके, दूसरों के अंदर दोषों को देखकर विचलित ना हो, दूसरों के दोष हमें इतने हानि नहीं पहुंचा सकते जितने हमारे अपने दोष हमारे को हानि पहुंचाएंगे। कई बार दूसरों के दोषों की कीर्तन करते हुए, दूसरों के दोषों की चर्चा करते हुए हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बस समझते कि कुछ भी नहीं हो सकता और इससे हम और डिस्करेज हो जाते हैं। तो बोले कि हर जीवन की हर परिस्थिति में चाहे कितने ही संकट क्यों ना आए, कितने ही कोई हमारा अपमान क्यों ना कर दे, जो भगवान की सेवा कभी नहीं रुकनी चाहिए, तो वो उत्साहित हम बने रहें। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज की कृपा से ही आज हम यहाँ पर हैं। इन्होंने जितना संघर्ष किया और फिर उसके बाद श्रीला प्रभुपाद जी ने इस संघर्ष को आगे बढ़ाया और इस ऊंचाइयों तक लेकर आए, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें जो धरोहर में प्राप्त हुआ इसको हम संभाल के रखें, इसको बिगड़ने ना दें। ये हमारा परम कर्तव्य है और ये हमारी सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी श्रीला भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज को। तो आइए हम प्रार्थना करें कि हम उनके परम शिष्य इसी भक्ति विदान स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी की मिशन में पूरे हृदय से जुड़े, अपना शरीर से, अपने मन से, अपनी वाणी से और इस गौड़िया वैष्णव मिशन को, जो चैतन्य महाप्रभु की वाणी को पूरे विश्व में फैलाने के लिए कुछ माध्यम बन सके। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, हृदय गोर प्रेमानंदे।